एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी और विरासत की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ 20वीं सदी के इतिहास का रुख मोड़ा बल्कि जिसके कामों का असर आज भी दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। वो नाम है माओ ज़ेडोंग। और हमारी इस चर्चा का आधार होगी डेलिया डिविन की किताब माओ। ये किताब माओ को किसी हीरो या विलन के खांचे में फिट करने की कोशिश नहीं करती बल्कि उनके जटिल मतलब जो विरोधाभासी व्यक्तित्व है उसे समझने की एक गहरी कोशिश है।
और ये समझना आज बेहद जरूरी है अगर हमें आज के चीन को समझना है, उसकी राजनीति, उसका समाज,
उसका दुनिया को देखने का नजरिया।
बिल्कुल, तो हमें माओ को समझना ही होगा। माओ की विरासत आप देखिए आज भी चीन में एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है। ये किताब हमें उन सरल नारों के पीछे छिपी हुई जटिलता को देखने में मदद करती है
कि कैसे एक ही व्यक्ति एक राष्ट्र निर्माता भी हो सकता है और एक महाविनाशक भी।
जी बिल्कुल।
तो आगे बढ़ने से पहले इस किताब की लेखिका डेलिया डेविन के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो कौन थी और माओ जैसे विशाल व्यक्तित्व पर लिखने के लिए उनका नजरिया इतना खास क्यों माना जाता है?
देखिए, डेलिया डेविन एक बहुत ही सम्मानित ब्रिटिश अकादमिक और चीन विशेषज्ञ थीं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो इतिहास को सिर्फ बड़े बड़े नेताओं और उनकी नीतियों तक मतलब सीमित नहीं रखती थीं।
अच्छा।
वो एक सामाजिक इतिहासकार थीं जिनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि इन बड़ी बड़ी नीतियों का चीन के करोड़ों आम लोगों, किसानों और खासकर महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा।
अच्छा, तो मतलब उनका नजरिया टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप था। वो कहानी को जमीन से आम लोगों की आंखों से देख रही थी।
बिल्कुल सही। उन्होंने चीन में रहकर पढ़ाई और काम किया। वो चीनी भाषा बहुत अच्छे से जानती थी इसलिए वो सिर्फ सरकारी दस्तावेजों पर निर्भर नहीं थी। उन्होंने उन आवाज़ों को सुनने और समझने की कोशिश की जो इतिहास के बड़े शोर में अक्सर दब जाती हैं। यही चीज़ इस किताब को बहुत मानवीय और कह सकते हैं सच्ची बनाती है।
चलिए तो अब सीधे किताब पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा आइडिया, इसका केंद्रीय तर्क क्या है? ये किताब माओ के बारे में हमें क्या बताती है?
किताब का जो केंद्रीय विचार है वो एक शब्द में है, विरोधाभास, या कह लीजिए द्वैत। डेविन कहती हैं कि माओ एक ही सिक्के के दो पहलू थे और आप एक को दूसरे से अलग करके नहीं समझ सकते। एक तरफ वो एक दूरदर्शी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने एक बिखरे हुए, अपमानित और अफीम के नशे में डूबे चीन को एकजुट किया
और उसे दुनिया के मंच पर एक ताकत के रूप में खड़ा कर दिया।
जी, और सिक्के का दूसरा पहलू,
दूसरा पहलू यह है कि वो एक क्रूर, वहमी तानाशाह थे जिनकी आदर्शवादी सनक और सत्ता की भूख ने इतिहास के कुछ सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों को जन्म दिया।
तो किताब इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है कि एक ही आदमी देश को बनाने वाला हीरो और तबाह करने वाला विलन दोनों कैसे हो सकता है। डेविन का तर्क है कि उनका राष्ट्र निर्माता होना और उनका विनाशक होना ये दो अलग अलग चीजें नहीं थी
बल्कि एक ही व्यक्तित्व से निकली थी।
बिल्कुल,
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो चलिए इस विरोधाभासी सफर को शुरू से समझते हैं। किताब उनके बचपन और शुरुआती सालों के बारे में क्या बताती है?
किताब हमें बताती है कि माओ हुनान प्रांत के एक खाते पीते किसान परिवार से थे। उनके पिता बहुत कठोर और दबंग थे। डेविन का तर्क है कि यहीं से माओ के अंदर हर तरह की सत्ता के खिलाफ
एक विद्रोह की भावना,
हाँ, एक गहरी भावना पैदा हुई जो जिंदगी भर उनके साथ रही। वो हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी को चुनौती देना चाहते थे, चाहे वो उनके पिता हों, पार्टी में उनके सीनियर हों, या बाद में सोवियत संघ जैसा ताकतवर देश।
मतलब जो गुस्सा अपने पिता के खिलाफ था वही बाद में पूरे सिस्टम के खिलाफ निकल गया। और उनकी पढ़ाई लिखाई का मतलब माहौल कैसा था?
वो एक तूफानी दौर था। चीन का सदियों पुराना राजवंश खत्म हो रहा था और देश में नए विचारों की बाढ़ आई हुई थी। माओ ने चीनी क्लासिक्स के साथ साथ पश्चिमी विचार भी पढ़े, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, विज्ञान। 1919 का जो मई 4th मूवमेंट था, जो एक तरह का बौद्धिक और सांस्कृतिक विद्रोह था, उसने उन पर गहरा असर डाला और यहीं से उन्होंने मार्क्सवाद को एक ऐसे शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा
जिससे चीन को बचाया जा सकता था।
जी, न सिर्फ विदेशी ताकतों से बचाया जा सकता था बल्कि एक गहरी सामाजिक क्रांति भी लाई जा सकती थी।
तो यहाँ से उनके क्रांतिकारी बनने का सफर शुरू होता है। इस दौर में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक समझ क्या थी?
यहीं पर माओ की असली प्रतिभा सामने आती है। उस समय दुनिया भर के मार्क्सवादी मानते थे कि क्रांति शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर करेंगे।
अच्छा।
लेकिन माओ ने चीन की नब्स को पकड़ा।
अच्छा।
उन्होंने समझा कि चीन में क्रांति का असली इंजन शहरों के मुट्ठी भर मजदूर नहीं बल्कि गांवों में रहने वाले करोड़ों शोषित किसान बनेंगे। ये रूढ़ीवादी मार्क्सवाद से एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसी विचलन था।
ये तो मार्क्स के विचारों से बिल्कुल अलग था, है ना?
मार्क्स तो हमेशा शहरी मजदूरों की बात करते
थे। बिल्कुल अलग।
और पार्टी के अंदर इस बात पर बहुत बहस और टकराव भी हुआ। कई बड़े नेता जो सोवियत संघ से ट्रेनिंग लेकर आए थे वो माओ की इस बात से सहमत नहीं थे,
लेकिन वो अड़े रहे,
वो अपनी जिद पर अड़े रहे। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी का KMT यानी कुओमिंतांग के साथ गठबंधन टूटा और 1927 में उन पर भयानक अत्याचार हुए। कम्युनिस्टों को शहरों से भागकर ग्रामीण इलाकों में छिपना पड़ा और यहीं माओ का आइडिया काम आया। उन्होंने जियांगशी में एक सोवियत की स्थापना की, मतलब एक छोटा सा कम्युनिस्ट नियंत्रित इलाका जहां उन्होंने पहली बार अपनी नीतियां आजमाना शुरू किया, जैसे जमीन छीनकर किसानों में बांटना।
लेकिन किताब बताती है कि यहीं पर उनकी क्रूरता भी पहली बार बड़े पैमाने पर सामने आई।
हाँ, सत्ता को लेकर वो शुरू से ही बहुत निर्मम थे। उन्होंने जियांगशी में पार्टी के अंदर अपने हजारों प्रतिद्वंदियों को दुश्मन का एजेंट बताकर बेरहमी से मरवा दिया और इसी दौर के अंत में शुरू हुआ लॉन्ग मार्च।
लॉन्ग मार्च, इसके बारे हमने बहुत सुना है। किताब इसे किस तरह से दिखती है? क्या ये सच में एक महान विजय थी?
किताब का नजरिया बहुत संतुलित है। वो कहती है कि सैन्य नजरिए से देखें तो लॉन्ग मार्च एक भयानक हार थी।
हार थी
जी, एक तरह की भगदड़। कम्युनिस्टों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। करीब 1,00,000 लोग चले थे और एक साल बाद मुश्किल से 8-10,000 ही जिंदा बचे।
तो फिर ये जीत कैसे बन गई? ये राजनीतिक रूप से?
राजनीतिक रूप से ये माओ की सबसे बड़ी जीत थी। इसी मुश्किल और जानलेवा सफर के दौरान उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को किनारे लगाकर पार्टी का निर्विवाद नेतृत्व हासिल कर लिया।
ये तो कमाल की बात है। एक तरह से हारते हारते वो सबसे बड़े नेता बन गए।
उन्होंने इस हार को एक कहानी में कैसे बदल दिया?
उन्होंने इसे संघर्ष, त्याग और इच्छा शक्ति की एक महान गाथा बना दिया। जो लोग इस मार्च से बचकर निकले वे माओ के प्रति चट्टान की तरह वफादार हो गए और यहीं से यानान का दौर शुरू होता है। किताब इसे माओवाद की भट्टी कहती है,
मतलब जहां उनकी विचारधारा को पकाया गया।
बिल्कुल, उसे ठोस रूप दिया गया और यहीं पर उन्होंने यानान सुधार आंदोलन के जरिए विचार नियंत्रण का एक मॉडल तैयार किया।
ये विचार नियंत्रण सुनने में बड़ा डरावना लगता है, इसका असल में मतलब क्या था?
इसका मतलब था कि पार्टी के हर सदस्य को माओ की तरह सोचना होगा। इसके लिए लोगों से सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां कबूल करवाई जाती थी, उनकी आलोचना की जाती थी, मानसिक रूप से तोड़ा जाता था।
हाँ, जब तक वो पूरी तरह माओ के विचारों को अपना ना लें। ये एक तरह का ब्रेन वॉशिंग अभियान था जो भविष्य में होने वाले क्रूर अभियानों का खाका बना। और इसके बाद 1949 में उन्होंने गृह युद्ध में KMT को हराकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की।
तो अब माओ एक विद्रोही क्रांतिकारी से एक देश के शासक बन गए। सत्ता में आने के बाद उनके शुरुआती साल कैसे थे?
ये साल भी जैसा हमने कहा विरोधाभास से भरे थे। कुछ वास्तविक उपलब्धियां थी। दशकों से चल रहा गृहयुद्ध खत्म हुआ, देश में स्थिरता आई, करोड़ों भूमिहीन किसानों को जमीन दी गई और 1950 का विवाह कानून।
हाँ, वो महिलाओं के लिए था
जी, जिसने महिलाओं को तलाक देने और अपनी मर्जी से शादी करने का हक दिया, जो उस समय के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम था।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी जरूर होगा।
बिल्कुल, इसके साथ ही सत्ता पर एक क्रूर पकड़ बनाई गई। प्रतिक्रांतिकारियों के नाम पर लाखों लोगों को मार दिया गया और इस दौर का अंत हुआ 100 फ्लावर्स कैंपेन से। ये माओ की एक बहुत ही कह सकते हैं शातिर चाल थी।
उन्होंने बुद्धिजीवियों को पार्टी की आलोचना करने के लिए बुलाया और कहा सैकड़ों फूलों को खिलने दो।
जी,
मतलब ये एक जाल था, पहले कहो कि हमारी आलोचना करो और फिर जो भी मुंह खोले उसे कुचल दो।
ठीक यही हुआ। जब लोगों ने सच में गंभीर आलोचना करनी शुरू कर दी तो तो माओ चौंक गए। उन्होंने तुरंत अभियान का रुख मोड़ा और उन सभी आलोचकों को दक्षिणपंथी और देशद्रोही बताकर या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया।
और इसने चीन में असहमति की आवाज को दशकों के लिए खामोश कर दिया।
बिल्कुल।
और इसी के बाद शायद उनके शासन का सबसे भयावह दौर आता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। किताब इसे कैसे बयां करती है?
किताब इसे माओ के अधीर स्वभाव और उनकी इस मान्यता का नतीजा बताती है कि सिर्फ इंसानी इच्छा शक्ति से प्रकृति और अर्थशास्त्र के नियमों को तोड़ा जा सकता है।
उन्हें लगता था कि सिर्फ जोश से ही देश आगे बढ़ जाएगा।
जी, उन्हें विश्वास था कि चीन सिर्फ जन उत्साह के दम पर रातों रात अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर एक कम्युनिस्ट स्वर्ग बन सकता है।
लेकिन सिर्फ जोश और नारों से स्टील और अनाज कैसे पैदा हो सकता है? ये तो सुनने में अजीब लगता है।
ये अजीब ही नहीं, विनाशकारी था। इसके तहत विशाल पीपल्स कम्यून बनाए गए, जहां लोगों की निजी जमीन, घर, यहां तक कि उनके खाना पकाने के बर्तन भी छीन लिए गए। सब कुछ सामूहिक हो गया। और सबसे विनाशकारी थी घर घर में स्टील बनाने की मुहिम।
क्या, घर में स्टील?
जी, जरा सोचिए, पूरे देश को कहा गया कि अपने घर के बर्तन, खेती के औजार, सब कुछ पिघलाकर पिछवाड़े में बनी कच्ची भट्टियों में डाल दो ताकि स्टील बन सके।
और इसका नतीजा क्या निकला?
नतीजा, करोड़ों टन रद्दी और बेकार लोहा, और किसानों के पास अगले साल खेती करने के लिए फावड़े तक नहीं बचे। ये सिर्फ एक नीतिगत गलती नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय भ्रम था।
और इसका अंजाम हुआ एक भयानक अकाल,
जिसमें अनुमान के मुताबिक 3 से 4.5 करोड़ लोग मारे गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल था।
3 से 4.5 करोड़, ये आंकड़ा तो दिमाग को सुन्न कर देता है। और ये त्रासदी इतनी बड़ी क्यों हो गई? कोई रोक नहीं पाया?
क्योंकि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। 100 फ्लावर्स कैंपेन के बाद सब डरे हुए थे। स्थानीय अधिकारी ऊपर बैठे नेताओं को खुश करने के लिए फसल उत्पादन के झूठे आंकड़े भेजते रहे, जबकि उनके अपने इलाकों में लोग भूखों मर रहे थे।
ये दिखाता है कि जब एक व्यक्ति की सत्ता निरंकुश हो जाती है
और सच बोलना खतरनाक हो जाता है, तो गलतियां महात्रासदी बन जाती हैं।
इस भयानक विफलता के बाद माओ को पार्टी में किनारे कर दिया गया, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। और यहीं से उनकी आखिरी और शायद सबसे विनाशकारी योजना की शुरुआत होती है, सांस्कृतिक क्रांति। ये समझना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। अपनी ही पार्टी और सरकार पर हमला करने के लिए उन्होंने देश के युवाओं को क्यों भड़काया?
इसका सीधा मकसद था बदला और सत्ता पर फिर से पूरा नियंत्रण। ये उन सभी पार्टी नेताओं से उनका बदला था जिन्होंने ग्रेट लीप की विफलता के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था।
तो उन्होंने युवाओं को इस्तेमाल किया?
हाँ, उन्होंने सीधे देश के युवाओं, जिन्हें रेड गार्ड्स कहा गया, को भड़काया। उनसे कहा गया कि वे पुरानी संस्कृति, पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुरानी परंपराओं, इन 4 पुरानी चीज़ों पर हमला करें। उन्होंने युवाओं को अपने शिक्षकों, माता पिता और यहां तक कि पार्टी के अधिकारियों को भी सरेआम बेइज्जत करने के लिए उकसाया।
ये तो अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था को तबाह करने जैसा था। देश में तो पूरी तरह अराजकता फैल गई होगी।
बिल्कुल, 10 साल तक देश में गृह युद्ध जैसे हालात रहे। हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत, किताबें, मंदिर, कलाकृतियां, सब नष्ट कर दी गईं। लाखों लोगों को प्रताड़ित किया गया या मार दिया गया। ये माओ की निरंतर क्रांति की विचारधारा का सबसे दुखद और हिंसक अंत था।
और किताब माओ की मृत्यु और उनकी विरासत पर, जो पार्टी का फैसला है कि माओ 70% सही, 30% गलत थे।
जी, जिसे डेविन एक राजनीतिक जरूरत तो मानती हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही अपर्याप्त मूल्यांकन कहती हैं।
इस पूरी कहानी को सुनकर कुछ बातें या थीम बार बार दिमाग में आती हैं। पहला तो है इच्छा शक्ति और निरंतर क्रांति में माओ का अटीट विश्वास।
सही कहा, उन्हें सच में लगता था कि जोशीली भीड़ किसी भी भौतिक या आर्थिक बाधा को पार कर सकती है, और यही सोच उनका सबसे बड़ा हथियार भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी।
एक क्रांतिकारी के तौर पर अच्छी, पर एक शासक के तौर पर विनाशकारी।
बिल्कुल, क्योंकि आप सिर्फ नारों से स्टील या अनाज पैदा नहीं कर सकते। असल दुनिया इच्छा शक्ति से नहीं, नियमों से चलती है।
दूसरा विषय है चीनी राष्ट्रवाद। किताब कहती है कि वो कम्युनिस्ट होने से भी ज्यादा एक चीनी राष्ट्रवादी थे।
हाँ, उनका सबसे बड़ा मकसद चीन के अपमान की सदी को खत्म करना था और उसे फिर से एक महान शक्ति बनाना था। कम्युनिज्म उनके लिए इस मकसद को पूरा करने का एक जरिया था।
इसीलिए शायद आज भी चीन में कई लोग उनकी गलतियों के बावजूद उनका सम्मान करते हैं।
जी, क्योंकि वे उन्हें वो नेता मानते हैं जिसने चीन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया।
और एक और थीम जो बहुत डराती है वो है व्यक्तित्व पंथ और असहमति का दमन।
और ये सिर्फ शासन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बल्कि सत्ता का एक जरूरी औजार था। चेयरमैन माओ एक देवता की तरह बन गए थे। उनकी छोटी लाल किताब वो एक धार्मिक ग्रंथ जैसी थी।
और इसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सच बोलना या सवाल पूछना देशद्रोह माना जाता था।
बिल्कुल, और यही अकाल के इतना भयानक होने का एक सीधा कारण बना। जब नेता के चारों ओर सिर्फ हां में हां मिलाने वाले लोग हों तो गलतियां त्रासदी बन जाती हैं।
किताब में माओ के कुछ प्रसिद्ध विचारों का भी जिक्र है, जैसे एक है सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसका क्या मतलब है?
के लिए भी सेना चाहिए और उसे बनाए रखने के लिए भी।
उन्होंने राजनीति को हमेशा एक युद्ध की तरह देखा।
जी, जहां या तो आप जीतते हैं या आप खत्म हो जाते हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं।
एक और मशहूर नारा है, सैकड़ों फूलों को खिलने दो, सैकड़ों विचारधाराओं को टकराने दो, जो सुनने में बहुत उदार लगता है।
जैसा हमने पहले बात की, डेविन इसे एक सोची समझी चाल के रूप में दिखाती हैं। ये उनके शासन का एक पैटर्न था, थोड़ी सी आजादी देना
ताकि पता चल सके कि कौन कौन असंतुष्ट है,
और फिर उन सबको एक साथ जड़ से उखाड़ फेंकना।
इस पूरी चर्चा से आज के समय के लिए क्या सीखा जा सकता है? इसकी आज क्या प्रासंगिकता है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख है निरंकुश शक्ति का खतरा। ये किताब दिखाती है कि जब सारी ताकत एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी के हाथ में आ जाती है और आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो विनाशकारी फैसले होना लगभग तय है।
ये हमें किसी भी समाज में लोकतांत्रिक जांच और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस, और एक आजाद मीडिया के महत्व की याद दिलाता है।
बिल्कुल,
और एक सीख यूटोपियन विचारधाराओं के खतरे के बारे में भी है, मतलब महान आदर्शों के नाम पर कितने भयानक अत्याचारों को सही ठहराया जा सकता है।
जी, माओ इसका एक दुखद उदाहरण है। यह हमें उन नेताओं से सावधान रहने की सीख देता है जो जटिल समस्याओं के सरल, क्रांतिकारी और रातों रात वाले समाधान का वादा करते हैं।
और आखिर में आज के चीन को समझना।
हाँ, माओ को समझे बिना आज के चीन की जिद और उसके डर को समझना असंभव है। आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थिरता को लेकर इतनी जुनूनी क्यों है या असहमति को इतनी सख्ती से क्यों दबाती है, इन सब सवालों की जड़ें माओ युग की अराजकता में हैं। वो उस दौर को दोहराने से डरते हैं।
इस चर्चा के अंत में मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो माओ का यही विरोधाभास है। एक ही व्यक्ति राष्ट्र निर्माता भी है और करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार भी। यह हमें सिखाता है कि इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में देखना कितना गलत है।
सही कहा, सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच के धुंधले इलाके में होती है। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माओ के सबसे बड़ी त्रासदियां कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उनकी मूल मान्यताओं का एक तार्किक नतीजा थी। उनकी ये मान्यता कि लक्ष्य इतना महान है कि उसके लिए कोई भी मानवीय कीमत चुकाई जा सकती है, ये सोच ही बेहद खतरनाक है।
ये किताब किसी भी नेता को देवता बनाने के खिलाफ एक चेतावनी है।
बिल्कुल, एक शक्तिशाली और स्थायी चेतावनी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।